الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فاوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام، رمضان کا مہینہ دیانتداری اور دوسروں کے ساتھ دھوکہ دہی سے دور رہنے کا مہینہ ہے. رمضان المبارک ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں آج سے جو شروع ہو رہی ہے یا جو شروع سے چل رہی ہے اور مرنے تک ہم اسے دیانتداری کے ساتھ بسر کریں. دیانتداری کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دھوکہ نہیں دیں، ان کو نقصان نہیں پہنچائیں اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں جس میں نہ ان کو نقصان پہنچے نہ ہمیں نقصان پہنچے. سورہ بنی اسرائیل کا جو اگلا حکم ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ جب بھی تم کسی کے لیے تولو تو پورا تولو. پورا تولنے کا یہ حکم دراصل عقل الاموال بالباطل کا جو حکم ہے اس کی ایک شاخ ہے، فرع ہے اس کی. قرآن مجید نے یہ اصول دیا ہے کہ ہم کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھائیں. باطل طریقے سے مراد یہ ہے کہ اس کو دھوکہ دے کر نہ لوٹیں، اس کو نقصان نہ پہنچائیں. یہ چیز ہماری کمائی کو حرام کر دے گی. حرام چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو وہ حرام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیے ہیں، جیسے سور کا گوشت ہے، یہ اپنی ذات میں حرام ہے، ان کی نجاست ان کی ذات کے اندر ہے، اس لیے حرام کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں، اس کے اور خون کے علاوہ، خون کے اندر بھی نجاست اس کی ذات کے اندر موجود ہے، لیکن باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اپنی ذات کی وجہ سے حرام نہیں کی گئی ہیں، بلکہ ان کے اندر نجاست ہم باہر سے ڈالتے ہیں. مثلاً ہم نے ایک کھانا پکایا اور غیر اللہ کے نام سے بانٹ دیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ حرام ہو جائے گا. مثلاً یہی گائے اور یہی بکری جو ہم ذبح کر کے کھا لیتے ہیں، یہ اگر مر جائے تو حرام ہو جائے گی. یہی گائے اور یہی بکری جسے ہم حلال سمجھتے ہیں، اگر ہم چوری کر کے لے آئیں، حرام ہو جائے گی. تو یہ چیز اس میں واضح رہنی چاہیے کہ کچھ نجاستیں ہمارے عمل کی وجہ سے ایک پاک طاہر چیز کے اندر شامل ہو جاتی ہے. تو چوری کر کے جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں یا ملاوٹ کر کے جو ہم نفع حاصل کرتے ہیں، وہ اپنی ذات میں تو برا نہیں تھا، لیکن ہمارے اس عمل کی وجہ سے وہ ناپاک ہو گیا ہے، نجس ہو گیا ہے اور ہمارے لیے وہ حرام ہو گیا. دین اسلام عقل الاموال بالباطل کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ ایک موقع پر جب سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اسے کہا کہ یہ اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے. یعنی جب آدمی دوسروں کا مال باطل طریقے سے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، فریب دے کر حاصل کرتا ہے تو اصل میں خدا کے بندوں کے خلاف ایک بغاوت کرتا ہے، ان کی مال کے بارے میں بے حس ہو جاتا ہے. مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ملکیت کا جو تصور دیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا مال اللہ نے ہماری ملکیت میں دیا ہے. اب یہ دوسروں کے لیے اس وقت تک حرام ہے جب تک ہم اپنی مرضی سے دوسروں کو نہ دے دیں. مثال کے طور پر میرا گھر، میرے گھر کی تمام چیزیں، میری کمائی اصل میں میری ہے، آپ کا اس پر کوئی حق نہیں ہے، اور آپ کی کمائی، آپ کا گھر، آپ کی چیزیں اصل میں آپ کی ہیں، میرا اس پر کوئی حق نہیں ہے جب تک کہ ہم باہم رضامندی سے ایک دوسرے کی چیز استعمال نہ کر لیں. یہ چیز سمجھنے کی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں، بعض خاندانوں میں، بعض بازاروں میں، بعض لین دین کے معاملات میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا. اگر پانی پینے پلانے کا مسئلہ ہے تو اس میں دوسروں کا نقصان کرتے چلے جاتے ہیں، بجلی کا استعمال ہے تو اس میں دوسروں کا نقصان کرتے چلے جاتے ہیں. تو باطل طریقے سے جو بھی ہم چیز کھائیں گے، جو بھی ہم استعمال کریں گے یا خود استعمال نہیں کریں گے، اٹھا لائیں گے، دوسروں کو دے دیں گے، یہ سب ناجائز ہے. اس کی جو سادہ شکلیں ہیں وہ جان لیجئے کیا ہیں. مثلاً ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ہم کم تولتے ہیں، ہم دھوکہ دے دیتے ہیں، کہا کچھ دے کچھ دیا. ایک چیز ہم سستی لائے تھے لیکن اس کو بڑھا چڑھا کر جھوٹی قسمیں کھا کے ہم نے قیمتی قرار دے دیا، اور اس طرح سے جو کمائی کی ہے وہ ساری کی ساری حرام ہے، وہ ساری کی ساری حرام ہے. جتنا نفع کمایا سب حرام ہے. آپ نے اپنے پیٹ میں आग भर ली है और कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि दूसरों के माल पर हमारा अगर कोई हक है तो वो जायज तरीके से है, सौदे की शक्ल में जो जायज हो, तजारत की शक्ल में जो जायज हो, लेन देन की शक्ल में जो जायज हो, तोहफे तहाइफ की शक्ल में जो आजादी से लोगों ने दिए हों, ये बिल्कुल दुरुस्त है, इनको खाया जा सकता है, इनको पिया जा सकता है। लेकिन जो भी बातिल तरीके से माल आ जाए वो नहीं खाया जाएगा। मिसाल के तौर पर उसकी सबसे संगीन सूरत सूद है। सूद इंटरेस्ट यानी रिबा जिसको अरबी में कहते हैं, इसके मानी ये है कि आप अपनी दौलत पर जो काबिले सर्फ है यानी इस्तेमाल करने से खत्म हो जाती है, रुपया है पैसा है, इसको किराए पर दे देते हैं। कोई चीज किराए पर देना उस वक्त दुरुस्त है जब वो काबिले इस्तेमाल हो। मसलन घर है, घर इस्तेमाल करने से खत्म नहीं होगा, इसका आप किराया ले सकते हैं, जायज है। लेकिन आप रुपए को किराए पर नहीं दे सकते क्योंकि वो तो इस्तेमाल होकर खर्च हो जाएगी। तो उसको, उस आदमी को आपका रुपया भी देना है और उसके ऊपर जो आप किराया ले रहे हैं वो भी देना है। जबकि घर जो आपने किराए पर दिया, जब आप कहेंगे आदमी खाली कर देगा, उसके ऊपर कोई दोहरा बोझ नहीं है, बस वो घर खाली करेगा और चला जाएगा। जबकि अगर आप करेंसी पर किराया लेंगे तो ये उसके लिए दोहरी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि करेंसी उसने घर में जाकर सजानी नहीं है, फ्रेम करके रख नहीं देनी है कि जब आप मांगेंगे आपको वापस कर देगा, उसने कोई ना कोई चीज लेनी है, उधार उसने इसलिए लिया है। तो इसलिए जितनी चीजें हम उधार ले आते हैं लेकिन वो किराए पर नहीं उठती, मैं सादा टोटका से एक बता रहा हूं कि हम कभी नहीं कहते जी कि मैं चीनी किराए पर लेके आया हूं, चीनी उधार होती है। हम कभी नहीं कहते जी मैं आटा किराए पर लेके आया हूं, लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए फट्टा, कुर्सी, मेज, ये किराए पे आ जाती हैं। तो जो चीजें किराए पे आम जिंदगी में हम उठा देते हैं, लोगों को दे देते हैं, उनके ऊपर किराया लेना, उनके टाइम गुजरने के बाद प्रॉफिट लेना जायज है। जो चीजें इस्तेमाल करने से खत्म हो जाती हैं, कंज्यूम हो जाती हैं, उनके ऊपर किराया लेना नाजायज है। ये पहली शक्ल है अकलुल अमवाल बिल बातिल की। दूसरी शक्ल यह है कि हम मिलावट कर दें। मिसाल के तौर पर हमने अच्छी गंदों में बुरी गंदों मिला दी और अच्छी गंदों ऊपर डाल दी, देखने वाले पसंद आ गई, ले ली, जब घर जाकर देखा तो उसमें बुरी गंदों में मिली हुई थी। तो अब आपने जो गंदी या बुरी गंदम अच्छे मेयार पर बेची है तो आपको तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन ये प्रॉफिट नाजायज, हराम है आपके लिए, इसका खाना आपके लिए जायज नहीं है। तो असूली तौर पर इस तरह की जितनी शक्लें हैं, मिलावट है, कम तोलना है, ये सब हराम हो जाएंगी। असूली तौर पर जान लीजिए कि दो असूल हैं जिसको हदीस में गरर और जरर के नाम से बयान किया गया है। गरर के मानी धोखा देकर बटोरना है और जरर के मानी नुकसान पहुंचाना है। यानी जब आप किसी के साथ ऐसा लेन देन करें कि जिसमें नुकसान पहुंच जाए, जैसा मिलावट है, जैसा कम तोलना है, तो ये चीज बिल्कुल ममनू है। दूसरी चीज गरर है यानी धोखा देना, धोखा देकर, फरेब देकर, चकमे में लाकर, पैसा बटोर कर जो भी आप कमाई करेंगे ये हराम हो जाएगी। तो कम तोलना असल में इस सारे असूल की एक अहम शाख है। यानी हम कई तरीकों से दूसरों का माल बातिल तरीके से खा लेते हैं, लेकिन कम तोलने से अल्लाह ताला ने इसलिए इसको अहमियत दी है कि ये तजारत का बुनियादी टूल है। कम तोलना, कम मापना, इसी के जरिए से सारी तजारत हो रही होती है। तो जब हम कम तोल रहे होंगे, कम माप रहे होंगे, तो असल में हम क्या कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। और अगर किसी भी मुल्क, किसी भी कौम ने तरक्की करनी है तो उसको करप्शन खत्म करना पड़ेगी। जिस सोसाइटी में करप्शन है वो तरक्की नहीं कर सकती, जिस सोसाइटी में करप्शन है वहां कारोबार, तजारत सही मानी में नहीं चल सकते। इसलिए कि हर आदमी को नुकसान होने लग जाएगा, हर आदमी को धोखा होने लग जाएगा, और जिसके नतीजे में कुरान मजीद कहता है कि जमीन में फसाद फैल जाएगा। हजरत शुएब रजी अल्लाह अन्हु की कौम का जो मर्ज था वो यही था कि वो कम तोलते थे, कम नापते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये फसाद ना मचाओ। इससे मानी ये है कि कम तोलने की आदत अगर कौमी सतह पर मर्ज बन जाए, हर शख्स ऐसा करने लग जाए, तो समझिए कि वो मुआशरा इस काबिल नहीं है कि इसके साथ कोई किसी किस्म का लेन देन किया जाए। उसके मिजाज में, उसकी आदत में अगर ये चीज पड़ गई है तो फिर वो कौम दुनिया में जिंदा रहने की हकदार नहीं होती। इसलिए इस चीज को निहायत सख्ती के साथ अल्लाह ताला ने बयान किया है। और जब 10 अहकाम दिए हैं सूरह बनी इसराइल में, तो तो अकलुल अमवाल बिल बातिल की बजाय इसको नुमाया किया है कि तजारत और लेन देन में जब कम तोला जाएगा, कम मापा जाएगा, तो ये ममनू हो जाएगा। इसको सूरह रहमान में एक और निहायत शानदार पहलू से अल्लाह ताला ने वाज़े किया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने जमीन व आसमान को उठाया तो वज़ाल मीज़ान, तो उसमें मैंने एक मीज़ान रख दी है। ये मीज़ान क्या होती है? बैलेंस, बिल्कुल अदल के साथ इसके अंदर कायम कर दिया है। अब फरमाया कि वला तुखसिरुल मीज़ान, वला तत्गौ फिल मीज़ान, इस मीज़ान में टेढ़ पैदा ना करो, कजी पैदा ना करो, इसको मतवाजन रहने दो, इसकी मतवाजी हालत ही इसका अदल है। तो जमीन व आसमान यानी इस कायनात का मिजाज अदल है, इंसाफ है, पूरा पूरा तोल तोलना है। तो इसलिए फरमाया कि इस मीज़ान के अंदर कजी ना पैदा करो, इसको सीधा रखो, और जब भी वजन करो तो सीधे तराजू के साथ वजन करो, दोनों पलड़े बराबर हों, ना तुम्हें नुकसान हो ना दूसरों को नुकसान हो। ये इसलिए है कि पूरी कायनात इस जगह खड़ी है, पूरी कायनात का मिजाज ये है कि इसके अंदर तराजू सीधी रखी जाए। कुरान मजीद इस बात को निहायत अहमियत से बयान करता है और मीज़ान, कायनात के अंदर जो मीज़ान रखी है उसका फिर तोल के साथ जिक्र किया है कि वला तत्गौ फिल मीज़ान वला तुखसिरुल मीज़ान, के जो भी वजन देना है वो पूरा दो, किसी के माल में कमी ना करो, तोलो तो पूरा तोल कर दो, जितने मुआवजे में जो चीज तुमने दी है उतनी ही, ये लाजमी बात है। और अगर कोई आदमी इससे इन्हराफ करता है तो कुरान मजीद के मुताबिक इस कायनात के इस मिजाज से इन्हराफ करता है, और जब कोई इससे इन्हराफ करता है तो खुदा के दिए हुए जाब्ते की खिलाफ वर्जी करता है, और जब कोई इससे इन्हराफ करता है तो असल में कबीरा गुनाह का इर्तकाब करता है। और कबीरा गुनाहों की सजा, जैसा मैं अर्ज करता आ रहा हूं, कि हमेशा हमेशा की दोजख है, सिवाय इसके कि आदमी तौबा करके दुनिया से जाए। तो ये चीज जान लीजिए, जो भी मामला करें, लेन देन का, सौदे का, तजारत का और अखलाकी लेन देन का, सिर्फ ये नहीं। अखलाकी लेन देन का सिर्फ ये नहीं होता कि हमें रुपया देकर कोई चीज लेनी होती है, बाज़ुकात अदले का बदला देना है, तो वो भी अल्लाह ताला कहते हैं कि मीजान की तवाजन सीधी रखी जाए ताकि कोई अखलाकी इन्हराफ सोसाइटी में पैदा ना हो। अगर सोसाइटी में अखलाकी इन्हराफात इस सदा के पैदा हो जाएं कि तराजू हर दुकान पे टेढ़ी हो जाए, हर दुकान पे सौदा कम दिया जाने लगे, तो इसके मानी ये हैं कि कोई शख्स उस मुआशरे का इस काबिल नहीं है कि उसके साथ मामला किया जाए। और जब तराजू में आदत पड़ जाएगी तो फिर दीन में भी आदत पड़ जाएगी। चुनाचे जिन जिन कौमों के अंदर लेन देन में खराबी आती है वो खुदा के साथ भी लेन देन में हीलाबाजी पे आ जाते हैं, खुदा के साथ भी लेन देन में हीलाबाजी इख्तियार कर लेते हैं, वो खुदा को भी चकमे देने लग जाते हैं। और यही वजह है कि जब यहूद ने अपने अंदर ये चीज पैदा कर ली तो उन्होंने खुदा के साथ भी हीलेबाजी शुरू कर दी। सब्त का मामला इसकी शानदार मिसाल है कि उन्होंने, अल्लाह ताला ने मना फरमा रखा था कि सब्त के दिन में शिकार नहीं करना, लेकिन उन्होंने दरिया के किनारे पर नालियां खोद ली, हफ्ते के दिन जो मछलियां आती थी वो तैरती हुई आ जाती, आगे नालियों के आगे घड़े खोदे हुए थे, उन घड़ों में गिर जाती, फिर वो वापस नहीं जा सकती थी, तो इतवार वाले दिन आकर वो उनको निकाल लेते थे। ये हीले कब कोई कौम इख्तियार करती है? जब उसकी आदत में धोखा देना शामिल हो जाए, फिर वो खुदा की भी परवाह नहीं करती। चुनाचे जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तशरीफ लाए तो यहूद अपने लोगों से कहते थे कि इनके सामने जाकर ये बातें ना किया करो, कहीं क्यामत वाले दिन वो तुम्हारे खिलाफ इसको गवाही ना बना लें। ये सूरत तब पैदा होती है जब हम अपनी जिंदगी के मामूलात में अपने अंदर धोखा देने की, फरेब देने की, कम तोलने की आदत डाल लें। इसी वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इससे बच के रहो, ये खुद भी कबीरा गुनाह है और इससे बहुत सारे कबीरा गुनाह पैदा हो जाते हैं। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।